ओम शांति। हमारे बीच में है आदरणीय भ्राता अतम प्रकाश भाई जी। हम करतल ध्वनि से भाई जी का वेलकम करते हैं। आप विशेष ऐसी बाबा की एक अनन्य बच्चे जो आपके वाणी, चेहरे और चलन से ज्ञान की गहराई स्पष्ट झलकती है। आप नागपुर महाराष्ट्र से 1972 में आपने ज्ञान प्राप्त किया है। आपने नागपुर विश्वविद्यालय से 1973 में एमएससी में स्वर्ण पदक के साथ पास किया है तथा 1976 माउंट आबू मुख्यालय में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया। आपने भारत के सभी प्रांतों में ईश्वरीय सेवार्थ भ्रमण किया तथा राज्यों की क्लासेस कराई। रेडियो और दूरदर्शन पर भी आपके इंटरव्यू समय प्रति समय प्रसारित होते रहते हैं। आपकी विशेषता राज्यों का गहन अध्ययन करना एवं दूसरों को भी कराना। आपने विश्व के पांचों महाद्वीपों में भ्रमण करके ईश्वरीय संदेश तथा राज्यों की शिक्षाएं देकर अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है और आप युवा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक एवं मधुबन हैं। ज्ञान सरोवर, मधुबन, शांतिवन तीनों परिसरों में आप टोली विभाग संभालते हैं। तो ऐसे विशेष व्यक्तिमत्व हमारे सामने उपस्थित है। अभी हम सुनेंगे आदरणीय भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी से और आज का विषय है हलचल में अचल स्थिति। भाई जी
ओम शांति। हलचल में अचल स्थिति, इस पुरानी दुनिया में समय प्रति समय हमारे सामने विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार के विघ्न आते ही रहते हैं। वास्तव में विघ्न क्या है, परिस्थितियां क्या है? विघ्न हमारे पिछले जन्मों के विकर्मों का फल या हमने जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है उसका फल या अनेक आत्माओं के साथ पुराना हिसाब किताब उसका फल विघ्न के रूप में हमारे सामने आता है। तो विघ्न जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें हलचल में नहीं आना है, अचल रहकर उन विघ्नों का, उन परिस्थितियों का सामना करना है। तो विघ्न जब आते हैं उस समय हमें अचल रहना है तो उसके लिए कुछ एक बातें बुद्धि में रखना जरूरी है। उसमें से पहली बात है नथिंग न्यू का पाठ पक्का करते चलें। जो भी विघ्न आते हैं, हर कलप हमारे सामने आए हैं, इसलिए इस कल्प में भी वो सामने आते हैं। कोई नया विघ्न या नया रूप में परिस्थिति आती है, उस समय हम घबरा सकते हैं, लेकिन जो भी विघ्न हमारे सामने आते हैं, उन विघ्नों का कई बार हमने सामना किया है, उन पर विजय प्राप्त की है, इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करके हलचल में भी हमें अचल रहना है। दूसरी बात, हलचल में अचल रहने के लिए एक बल और एक भरोसे पर सदा स्थित रहें, एक बाबा पर मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, उनसे हम बल लेते रहें और विघ्नों का सामना करते रहें। कहते हैं संशयंति विनश्यंति, थोड़ा भी संशय या भरोसे में कमी आती है तो बाबा से जो हमें बल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसलिए हमारा निश्चय अडोल रहे, कभी भी अडिग न रहे, डगमग मन हो। तीसरी बात, कोई भी विघ्न जो आता है वो दीर्घकालीन नहीं होता है। जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है, ऐसे परिस्थितियां भी परिवर्तनशील होती हैं। जैसे सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, तो विघ्न जो भी आते हैं वो पार हो जाते हैं। इसलिए हमें निराश नहीं होना है, हमेशा आशाओं का दीपक जलता रहे, और विघ्नों का सामना करते रहें। तो स्वतः ही हमें विघ्नों पर विजय मिलेगा ही। चौथी बात है, बाबा कहते हैं जब भी विघ्न आते हैं मैं आपको मदद करूंगा। बाप का काम है बच्चों को मदद करना, इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाला कर सके चाहे सब जग वैरी होए। कितनी भी बड़ी परिस्थितियां आई जिन पर भगवान की छत्र छाया होती है, भगवान का हाथ जिनके सिर पर होता है, उनको भगवान का साथ अवश्य मिलता है। इसलिए कई बार परिस्थिति में हम विजयी होते हैं तो देखने वाले कहते हैं बाल बाल आप बच गए। बाल बाल बचने का मतलब क्या है? तो बाल को भी हमें धक्का नहीं लगा सकते हैं, तो शरीर की तो बात ही दूर रही। लेकिन बाबा के छत्र छाया हमें अनुभव करना है। जितना बाबा को याद हम करते जाते हैं, बाबा की छत्र छाया अनुभव करते जाते हैं। इसलिए बाबा भी कहते हैं, योगी बच्चों का मैं सदा सहयोगी बनता रहता हूं। इसलिए हर परिस्थिति में हमें बाप का साथ और बाप का हाथ अनुभव करना जरूरी है। पांचवी बात, जब भी हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां आती हैं, तो हमें फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाबा हमारे लिए रोल मॉडल हैं। ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, बहुत बड़े बड़े विघ्न आए, लेकिन एक बल और एक भरोसे से बाबा ने सब विघ्नों को पार किया। और आज हम देख रहे ये सारा हमारा परिवार है, ब्राह्मण संसार है, इतना विकसित होता जा रहा है, ये ब्रह्मा बाबा के ही विघ्न जित स्थिति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाबा अगर विघ्नों का सामना सहज कर सकता है, तो मैं आत्मा भी कर सकती हूं। तो बाबा से हमें प्रेरणा लेना है। हम देखते हैं अपने घरों में कुछ बड़े हस्तियों के चित्र रखते हैं, चित्र से उनका चरित्र हमें याद आता है। चरित्र इत्र शब्द उसमें अंतर्निहित है। इत्र अर्थात उनके चरित्र से दिव्यता की सुगंध हमें मिलती है, प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। तो ब्रह्मा बाबा से हमें यही प्रेरणा लेते रहना है कि चाहे कैसे भी परिस्थितियां आए, कैसा भी विघ्न हमारे सामने आए, हमें विचलित नहीं होना है। तो स्वतः ही आपको हिम्मत आएगी, और जितनी हिम्मत आती है उतना बाबा की मदद हमें मिलती ही जाती है। सदा याद रखें, हलचल में आने वाला बहुत भारी नुकसान अनुभव करता है। दुनिया में कहते डरना माना मरना, जो डर गया वो मर गया। क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जब विघ्न आता है तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, धैर्यता का पल्ला छोड़ देते हैं, तो मानसिक संतुलन खो देते हैं, आत्मविश्वास भी खो देते हैं, तो विघ्नों का सामना नहीं कर सकते हैं। हमारी स्थिति लड़खड़ाती है और स्थिति हमारी धड़ाम से नीचे आती है, नीचे गिर जाते हैं। इसलिए भगवान मेरे साथ हैं, डरने की क्या बात है। हम बाबा के बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से विघ्नों का सामना किया है और क्लब किया है, उसके बहुत सुंदर यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं। अंगद के रूप में, अंगद के लिए कहानी बताते हैं। अंगद रास्ते में बैठा था, रावण घमंडी आया, कहते मेरे रास्ते से हट जाओ। अंगद मुस्कुरा के कहता है, हे रावण, तुम मेरा पैर हिला के तो दिखाओ। मैंने राम का नाम लेकर पैर को पक्का किया है। तो रावण जैसे उसके पैर को हिलाता है, पसीना पहुंचता जाता है, हिला नहीं सकता है। कहते ये तो जादू का बंदर है, कोई अंगद होकर नहीं गया है, ये सारे अंगद बाबा के बच्चे यहां बैठे हैं। हमारे कारण ये कहानियां बनी हैं। अंगद, अंग द अर्थात जिसने अंग को भुला दिया, आश्चर्य स्थिति में स्थित कर दिया, बाबा की याद में अर्थात निराकार राम की याद में खो गया, तो उसका बुद्धि रूपी पैर रावण माया नहीं ला सकती है। दूसरी बात, अंगद गद गद, अंगद माना जो हमेशा गदगद रहता है, खुशी में झूमता रहता है, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलता रहता है, उसको अंगद कहते हैं। विघ्न उनको डरा नहीं सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। कहीं कहते हैं हमारे जीवन में विघ्नों को नहीं आना चाहिए, लेकिन विघ्न आना ये अच्छी बात है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? साधारण पत्थर जो होता है उसको जब तक हथौड़े नहीं लगते हैं तब तक वो पूजनीय मूर्ति नहीं बनता है, मंदिर में लोग उसका दर्शन नहीं करने जाते हैं। वो हथौड़े ही उसको पूजनीय मूर्ति बनाते हैं पत्थर को। तो इससे हम में भी ये जो परिस्थितियों रूपी हथौड़े हैं, विघ्नों रूपी जो हथौड़े हैं, वो अपनी स्थिति को परिपक्व बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं, और द्वापर युग से हमारी पूजा भी होती है। तो हमें विघ्नों के हथौड़ों से नहीं घबराना है। परिस्थितियों के पेपर से नहीं घबराना है। परिस्थितियों के पेपर जो हमारे सामने आते हैं, उन पेपर का सामना करते हैं अच्छी तरह से, तो पेपर हमें अगली कक्षा में ले जाते हैं। सातवीं का पेपर देंगे तो आठवीं में जाएंगे। तीन से परिस्थितियों रूपी पेपर जितना जितना हम देते हैं, स्थिति हमारी आगे बढ़ती जाती है, बहुत ऊंची स्थिति बनाने में हम सफल होते जाते हैं। इसलिए हमें परिस्थितियों से घबराना नहीं है। परिस्थिति अर्थात परिस्थिति, पर की स्थिति, बाहर की स्थिति, मेरी है अंदर की स्थिति। मेरी अंदर की स्थिति पावरफुल है तो बाहर की स्थिति मेरे पर प्रभाव नहीं डाल सकती। वर्तमान समय जो पेपर हमारे सामने आ रहा है, विघ्न हमारे सामने आ रहा है वायरस का। डॉक्टर कहते हैं जिनकी इम्यूनिटी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर है उन पर यह वायरस अटैक करता है। यहां शरीर की बात नहीं, यह आत्मा की बात है। माया के रोग हमारी आत्मा की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, तो माया के कीटाणुओं का, माया के रोगों का प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ सकता है। तो आत्मा की रोग प्रतिकारक शक्ति कैसे बढ़ाएं? उसके लिए सकारात्मक चिंतन हमारे मन में सदा चलता रहे। कहते जो अच्छा खाता है वो तंदुरुस्त रहता है। तो आत्मा को भोजन हम अच्छा खिलाना है, सकारात्मक संकल्पों का, शक्तिशाली संकल्पों का, ज्ञान रत्नों का, स्वचिंतन का, प्रभु चिंतन का। तो जब हम ऐसा भोजन आत्मा को खिलाते जाएंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली बनते जाएंगे।
प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
ने कहा है विघ्न अंत तक आते रहेंगे, परिस्थितियां अंत तक आती रहेगी, इसलिए हमें सदा याद रखना है स्वस्थिति से ही परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी स्वस्थिति जितना जितना शक्तिशाली बनती जाती है उतना उतना विघ्नों को हम मनोरंजन के रूप में अनुभव करते जाते हैं। अगर हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं होती है तो माया हमें कठपुतली की तरह नचाती रहेगी। हम इतने कमजोर नहीं हैं जो हमें माया नचाएं। हमारी स्थिति इतनी सस्ती नहीं है जो हम किसी के हाथ का खिलौना बन जाएं। हमें अपना स्वाभिमान है, इसलिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने का लक्ष्य रखना है। ऐसी स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए तीन बातों पर आपको अभ्यास करना है। ब्राह्मण जीवन में कभी भी नहीं बोलना है भगवान तो मुझे मिल गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के पास आने के बाद मुझे क्या करना है। मुझे बहुत अच्छी अच्छा लडोल स्थिति बनाना है, ये हमारा लक्ष्य हो। अगर अच्छा लडोल स्थिति बनाने में सफल हुए तो समझो मैंने बाबा से बहुत कुछ पा लिया है। तीसरी अच्छा लडोल स्थिति बनाने के लिए पहली बात, हमें देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत लंबे समय तक करते जाना है। जब भी हम आत्मा के भान में स्थित हो जाते हैं अपने देह से, देह के पदार्थों से, देह की दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन कट हो जाता है, हम न्यारे हो जाते हैं। तो देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अभ्यास गुप्त ही गुप्त रूप में हमें करना है, यही तपस्या हमें करना है। क्योंकि बाबा कहते जितना देह से न्यारा उतना ही बाबा का प्यारा बनते हैं, अर्थात बाबा को याद कर सकते हैं। आत्मा के साथ देह की कंपनी अगर है, उसका भान अगर हमें रहता है तो बाबा की कंपनी का अनुभव नहीं होता है। इसलिए देह के भान को मिटाते जाएंगे तो बाबा का साथ, बाबा की कंपनी हमें मिलती जाती है। मैं हूं ज्योति बिंदु सितारा, यह मेरा मूल अस्तित्व इस संसार में है। मैं भाई या बहन नहीं हूं, मैं दिव्य सितारे के रूप में धरती पर आया था और चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में ही घर वापस जाऊंगा। सितारा, अपने को भी तारा समझना है और जो भी सामने आते हैं उनके भ्रुकुटी में भी तारा देखना है, चमकता हुआ सितारा अनुभव करना है। तो अपने देह से भी न्यारे और दूसरों के देह के बहान से भी, लगाव से बहान से न्यारे होते जाएंगे। न्यारे होने के बाद यहां से हमें ऊपर जाना है, मन बुद्धि को ऊपर ले जाने के लिए दूसरी बात है स्वमान का अभ्यास करना। स्वमान में जब हम स्थित होते हैं तो ईश्वरीय नशे में झूमने लगते हैं, एक अलौकिक मस्ती हमें अनुभव होने लगती है, जिससे हमारा मन और बुद्धि हल्की फुल्की होती है और ऊपर उड़ने लगती है और हमें बाबा के पास परम धाम में जाकर बिठा देती है। यह स्वमान काम करता है, इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। जब हम ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं तो ये दुनिया में हमारे मन बुद्धि को चैन नहीं मिलती है, हम अपनी दुनिया में जाने लगते हैं, एक दुनिया घटिया दुनिया लगती है, असार संसार होने लगता है, नीरस दुनिया लगने लगती है, कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है। बेगमपुर के बादशाह की स्थिति हमारी होती है। बेगमपुर माना परम धाम, जहां कोई गम नहीं है वहां हमें वो बिठा देता है नशा। नशा का उल्टा है शान। ईश्वरीय नशा ब्राह्मण जीवन की शान है, ब्राह्मण जीवन की आन है। इसलिए सदा ईश्वरीय नशे में झूमते रहे। जैसे राजकुमार की विशेष अपनी ड्रेस होती है, तो हम सभी ईश्वर के बच्चे ईश्वरीय कुमार हैं, हमारी सभी की ड्रेस है ईश्वरीय नशा। वो ईश्वरीय नशे की ड्रेस ही पहनकर हमें सारे दिन भर में रहना है। स्वमान के सिंहासन से नीचे उतरना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसा भी विघ्न आ जाए, मुझे सिंहासन से कोई शक्ति नीचे उतार नहीं सकती है, क्योंकि भगवान ने मुझे ये सिंहासन दिया है, ये सर्व प्राप्तियों का सिंहासन है, सब सर्व प्राप्तियां हमें इस सिंहासन से होती है। तो होनहार हम सभी राजाओं को बाबा ने ये संगम युग में सिंहासन दिया है स्वमान का। जब हम यहां से ऊपर चले जाते हैं तो तीसरी बात है बाबा के साथ लंबे समय तक बैठे रहने की। उसके लिए आवश्यकता है दिल में परमात्म प्यार बढ़ते रहना, भगवान से सच्ची प्रीत बढ़ते जाना। प्यार सबके साथ हो लेकिन दिल का प्यार केवल उसके साथ ही हो, बाबा के साथ ही हो। प्यार के सागर के बच्चे हैं, सबके साथ प्यार से रहना है, किसी के साथ घृणा या नफरत हमें नहीं करना है। लेकिन जो दिल का प्यार है, जिगरी प्यार है, केवल उसके साथ ही हमें उसका सौदा करना है, क्योंकि प्यार एक ऐसी दुनिया में चुंबकीय शक्ति है। आत्मा और परमात्मा में जो हजारों मीलों की दूरी है, उस दूरी को समाप्त करके एकदम आमने सामने मुलाकात की अनुभूति कराती है, कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें ये प्यार की शक्ति कराती है। जितना प्यार उतना बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी रहती है। न चाहते हुए बाबा की याद में हम खोए रहते हैं। तो बाबा के पास जब हम बैठते हैं, वहां से हमें कोई शक्ति हटाए नहीं, मायावी शक्ति हिलाए नहीं। उसके लिए बाबा 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 चलते फिरते उठते बैठते जागते बस बाबा ही बाबा हमें दिखाई देता रहे। जो बहुत प्यारी चीज होती है वो आंखों में बसती है। भगवान के हम प्यारे बच्चे हैं, इसलिए भगवान के नैनों के नूर हम बनते हैं, और भगवान भी हमें सबसे प्यारा है, इसलिए भगवान हमारे नैनों का नूर अनुभव करते हैं। और जो भगवान के नैनों का नूर बनते हैं वही जहान के नूर बनते हैं। कोई पूछता है भाई कहां रहते हैं आप, हमें ईंट और पत्थर के मकान में नहीं रहते हैं, हम तो भगवान के दिल में रहते हैं और भगवान हमारे दिल में रहता है। कितना ऊंचा भाग्य है ये, भगवान ने हमें दिल में अपनी जगह दे दी। हमने भी उसको अपने दिल में बिठा दिया है। कोई अगर आपसे पूछे आपके जीवन के सबसे खुशनुमा पल कौन से हैं, गोल्डन मोमेंट्स कौन से हैं, तो जवाब हमें यही देना है, जब मैं आत्मा परम धाम में सर्व सुखों के सागर, पवित्रता के सागर, शक्तियों के सागर के संग में स्वयं को अनुभव करती हूं, वो पल मेरे जीवन के सबसे खुशनुमा पल है। ये पल मेरी प्रॉपर्टी है, इन पलों को हमें बढ़ाते जाना है। सारे कल्प में हमें केवल संगम युग में चांस मिलता है। भगवान के पास, भगवान के सानिध्य में, प्यार के सागर के कंठे पर बैठकर, प्यार के सागर की लहरों में लहराते रहना, ये केवल संगम युग में चांस मिलता है। इसका हमें पूरा लाभ लेना है। एक एक पल मेरा विशेष पल हो, भगवान की याद में टिकते हैं तो वो सुंदर अनुभूति हमें होती है। हलचल में हम क्यों आते हैं, उसका कारण है अनुभूतियों की कमी। अनुभवी आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास अलौकिक अनुभव की पूंजी होती है, इसलिए वो हर परिस्थिति में अचल डोल रहता है। क्योंकि हमें हलचल में अचल रहने का अभ्यास अभी करना है और आगे आने वाले हलचल के वातावरण में भी अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। मनसा सेवा वही कर सकता है जिसका मन शांत और धीर्य और शीतल रहता है, हलचल में नहीं आता है, विचलित नहीं होता है, वही मनसा सेवा बेहद की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमें अभी से वो अभ्यास करना है। ब्रह्मा बाबा के जैसी अचल डोल स्थिति को अनुभव करते जाना है, शक्तियों का स्टॉक जमा करना है और अनेक आत्माओं को शक्तियों को दान देते जाना है, अनेक आत्माओं का भला हमें करते जाना है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हलचल भी बढ़ती जाएगी और मनसा सेवा का बोलबाला बढ़ता जाएगा। न लोग हमारे पास आ सकेंगे न हम लोगों के पास जा सकेंगे, दूर बैठे भी हमें अनेक आत्माओं की सेवा करनी होगी। शक्तिशाली मन के द्वारा भगवान से शक्तियां लेते रहना और आत्माओं को शक्तियों का दान देते रहना, यही धंधा हमारा होगा। इसमें हमें सफलता बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करना है तो बाबा कहते लंबे समय का अचल अडोल स्थिति का अभ्यास आपको बढ़ाना है। अचल स्थिति की यादगार अचलगढ़ के रूप में माउंट आबू पर है। अचलगढ़ ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों की भी अचल स्थिति की वो यादगार भक्ति वालों ने बना के रखी है। तो कलब कलब हमने इसी अचल स्थिति को प्राप्ति की थी, अभी भी इस कलब में भी करना है, करके ही रखना है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा हो। तो दृढ़ता की परछाई है सफलता। कई बार ब्राह्मण संसार में हम देखते हैं कोई ईर्ष्या द्वेष के कारण कोई किसी को आगे बढ़ने नहीं देता है, उसके टांग खींचता है, उसके गिलानी करता है, उसकी निंदा करता है। ये बातें हर प्रकार की ब्राह्मण जीवन में बहुत आनी है। हमें एक ही स्लोगन याद रखना है, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हमें सदा मस्ती में रहना है, अपने बाबा की याद में रहना है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है। तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती, ये हिसाब है। हमारे जैसी ऊंची स्थिति ऊंची हस्ती किसी को नहीं मिली है। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इतनी बड़ी स्थिति हस्ती हमें मिली है, उनके छत्र छाया में हम पल रहे हैं। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भाग्य विधाता ही हमारे भाग्य के गुण हर रोज मुरली में गाता रहता है, कितने भाग्यशाली हैं हम। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए ऐसी पावरफुल स्थिति की अनुभूति करेंगे, स्वस्थिति की अनुभूति करेंगे, ताकि परिस्थितियां तिनके की तरह हमारे सामने से उड़ जाएं। तो चले हम सभी बहुत सुंदर गहन योग की स्थिति में स्थित होने के लिए बैठेंगे। ओम शांति। मैं निराकार ज्योति बिंदु निर्विघ्न आत्मा, इस शरीर रूपी कुटिया में विराजमान हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। शक्तियों के सागर शिव पिता की शक्तिशाली आत्मा संतान हूं। शक्तियों की सजीव तरंगे उस आत्मा से चारों ओर फैल रहे। पंक्तियों के किरणों का आभा मंडल, मस शक्तिशाली आत्मा के चौ ओर अनुभव हो रहा है। मैं विघ्न चित शक्तिशाली आत्मा हूं, स्वयं के निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप को दिव्य चक्षु से स्पष्ट देख रहा हूं और अनुभव भी कर रहा हूं। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ, दमकता हुआ ज्योति बिंदु सितारा मेरे भ्रुकुटी में, दिव्य सितारा दमक रहा है, चमक रहा है, दिव्यता की चमक फैला रहा है। मैं निराकार ज्योति बिंदु, चमकती हुई आत्मा, दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर विधाता वरदाता बाप को मिलने जा रही हूं, उड़ती हुई जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मस निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर चमकीली दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। मेरे हरेक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही है। फरिश्तों के महाराजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है, मेरे अति प्यारे हैं, अति मीठे। शिव पिता भी उनके प्रकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाप दादा मुझे अति स्नेह भरी और शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। उस फरिश्ते को नजर से निहाल कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार, असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। पापा की सुखद दृष्टि का भरपूर आनंद ले रहा हूं। बाबा मुझसे पर्सनली दृष्टि दे रहे हैं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निर्वाण धाम की ओर उड़ते हुए जा रही हूं। निर्वाण धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति, परम शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। मेरे प्राणों के भी प्राण सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा के सुंदर स्वरूप को निहार रही हूं, देख रही हूं, जी भर के देख रही हूं। उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर, मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है, शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य पिता से बेहद शक्तिशाली, किरणों की बरसात निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य पिता से असीम शक्तियां प्रचंड शक्तियां अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रही है। मैं आत्मा निर्विघ्न बनती जा रही हूं। ज्ञान सूर्य की रोशनी में नहा रही हूं, ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, सबसे खुशनुमा पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रहे हो, परम सुख की परम आनंद की अनुभूति हो रही है। बाबा के प्यार में मैं आत्म ज्योति खो चुके हूं, कंबाइंड हो चुके हूं, शिव मैं बन चुके हूं, लीन हो चुके हूं, शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर वापिस आ रही हो, और इस साकारी शरीर रूपी कुटिया में मैं शक्तिशाली आत्मा विराजमान हो चुकी हूं। मस शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। निर्विघ्न वायुमंडल बनता जा रहा है। मैं विघ्न जीत आत्मा हूं, निर्विघ्न आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा से चारों ओर निरंतर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती से शक्तियों की सुगंध, दिव्यता की सुगंध चारों फैलती ही जा रही है। सारे विश्व में दिव्यता की सुगंध फैल रही है। ओम शांति शांति।